हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगली सुबह जमीन पर कुछ गिरने की आवाज़ से अंबिका की नींद खुली। वो अपने घर के लिविंग एरिया में सोफे पर बैठी बैठी सो रही थी। आंख खुलते ही उसने इधर उधर देखा। उसकी नज़र अपने पापा के कमरे की ओर गई और वो तुरंत वहां भागी। उसने देखा कि उसकी बहन देविका पहले से ही वहां थी और उसके पापा शायद पानी पीने की कोशिश कर रहे थे। ग्लास उनके हाथ से छूटकर गिर गया था। देविका ने उठाकर वो ग्लास साफ किया और अपने पापा को पानी पिलाया। अंबिका ने उन दोनों को देखकर कहा, क्या हुआ देविका, सब ठीक तो है ना? पापा आप ठीक हैं? पैरालिसिस अटैक की वजह से अंबिका के पापा ज्यादा बोल नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने बस धीरे से अपना सिर हिलाया। देविका ने अपने पापा को पानी पिलाने के बाद अंबिका की ओर आई और धीमी आवाज में बोली, दीदी वो अक्षय भैया वो अभी तक नहीं आए हैं और आप भी बाहर ही सो गईं। मैं भी अपने रूम में सो गई थी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी भी आँख खुली। देविका की बात सुनकर अंबिका मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गई। वो अपने पापा के सामने इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। उसके पापा अपनी जगह पर लेट चुके थे। अंबिका देविका का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आई। देविका ने कहा, दीदी मुझे बहुत टेंशन हो रही है भैया की, पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है। कहाँ रह गए वो? वो तो कभी रात भर घर से बाहर नहीं रहते ना, आप ही कहती हो वो हमेशा टाइम से घर आ जाते हैं। देविका के दोबारा सवाल पूछने पर अंबिका के चेहरे पर भी चिंता की लकीर साफ नजर आने लगी। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ आ तो जाता है, लेकिन कल जब उसने फ़ोन करके मुझे कहा कि ऑफिस से वो कहीं और जा रहा है अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने, तभी मुझे बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों कुछ तो अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आखिर कैसे मैं उसे रोक सकती हूँ, उसकी अपनी भी तो लाइफ है, बस इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। लेकिन अक्षय पूरी रात घर वापस ना आया हो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये जितनी भी देर में आता आ ही जाता था। कल रात से वो दोनों अपने भाई का इंतजार कर रही थीं। अक्षय उन दोनों को झूठ बोलकर मीशा से मिलने गया था। दोनों बहनों को इस बारे में कोई खबर नहीं थी, इसीलिए वे काफी परेशान हो गई थीं। अंबिका ने अपनी तरह से अक्षय के बारे में पता लगाने की कोशिश की। उसने एक एक करके उसके सारे दोस्तों को फ़ोन कॉल करने लगी, क्योंकि फिलहाल उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसे अपने भाई की बहुत चिंता हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर बंगला, मीशिका की शादी का दिन था। सुबह से ही वहां अफरा-तफरी मची हुई थी। वेदांश खुद सारा काम देख रहा था। सब कुछ काफी अच्छे से हो गया था। सारी तैयारियां, डेकोरेशन और मंडप भी बंगले के लिविंग एरिया में सजा हुआ था। बाकी सारे सामान को हटा दिया गया था और बंगले का लिविंग एरिया एक बहुत ही बड़े हॉल में कन्वर्ट हो चुका था। वो बंगला पहले ही बहुत बड़ा था और उसका हॉल कम से कम 500 लोगों के आने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उतने लोगों को वेदांश ने इनवाइट भी नहीं किया था। इतनी जल्दबाजी में शादी हो रही थी तो उसे पता था कि सब लोग शादी में नहीं आ पाएंगे, इसलिए उसने कुछ करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को ही इनवाइट किया था, जिनमें से ज्यादा उसके बिजनेस पार्टनर और बिजनेस फ्रेंड्स थे। क्योंकि शादी भी एक बिजनेस पार्टनर फ्रेंड से हो रही थी तो ज्यादातर उन दोनों के कॉमन फ्रेंड थे। कुछ घंटे बाद शाम के वक्त एकदम टाइम पर ही बारात आ गई। वेदांश इस बीच लगातार यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। जब वो तुषार और उसकी फैमिली का वेलकम करने के बाद मीशिका को लेने उसके कमरे में पहुँचा तो काफ़ी देर तक मीशिका के कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वेदांश ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, क्या हो गया अब फिर से, इस लड़की के तो नाटक खत्म नहीं होते। इतना बोलते हुए हाथों की कसकर मुट्ठी बांधते हुए गुस्से में वेदांश ने अपने दांत पीस लिए और जोर जोर से उसके कमरे के दरवाजे को पीटने लगा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। गुस्से में उसने अपनी माँ का नाम लेकर कहा, मॉम मॉम यहाँ पर आइए जल्दी, कहाँ हैं आप? उसके चिल्लाने पर उसकी माँ भागती हुई वहाँ आ गई। उन्होंने वेदांश की तरफ देखते हुए कहा, क्या है अब तुम्हें, शादी हो तो रही है फिर भी सुकून नहीं है, इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो, कोई सुनेगा तो क्या समझेगा? अपनी साड़ी ठीक करते हुए वेदांश की माँ ने बेरुखी से कहा। वेदांश ने गुस्से से कहा, मुझे भी ऐसे चिल्लाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन आपकी ये बेटी कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे परेशान करने का। क्या हो गया है अब, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही, तैयार हुई है या फिर नहीं? कम से कम आपको ये सब तो देखना ही चाहिए, मैंने तो सुबह से नहीं देखा उस लड़की को, कहीं आपने फिर से उसे भगा तो नहीं दिया? वेदांश की माँ ने जवाब दिया, बेकार की बातें मत करो, अभी तक वो अपने कमरे में ही थी, थोड़ी देर पहले तक मैं उसे सारा सामान देकर गई थी और ब्यूटिशियन भी अभी आधे घंटे पहले ही उसके कमरे से निकलकर बाहर गई है। वो रेडी हो गई होगी। वैसे भी कोई और ऑप्शन कहाँ छोड़ा है तुमने उसके पास? वेदांश आत्मविश्वास से बोला, ऑप्शन होना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों की लाइफ में जो अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले रहते हैं। उन्हें बस वही करना चाहिए जो उनके लिए बेहतर हो, और मैंने तय किया है। वेदांश की बात पर उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे आते हुए वो भी दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर वेदांश ने कहा, हटिए, मैं ये दरवाज़ा तोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता खुद से दरवाज़ा खोलकर ये लड़की बाहर नहीं आएगी। वेदांश बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। एक ही झटके में उसने जोर लगाकर अपने कंधे से दरवाजे पर हिट किया और तुरंत ही दरवाज़ा खुल गया। और जैसे ही उसके कमरे का दरवाज़ा खुला, उसे सामने जो नज़र आया उसे देखकर सब हैरान रह गए। वेदांश के मुंह से निकला, क्या है ये सब, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बहन कहाँ है? वेदांश के साथ ही कमरे के अंदर आई उसकी माँ और बुआ भी सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गईं, लेकिन उन्हें मीशिका वहाँ कहीं भी नज़र नहीं आई। क्रमशः, क्या लगता है आप लोगों को, ऐसा क्या हुआ है वहाँ पर? कौन है मीशिका की जगह पर वहाँ, और मीशिका कहाँ गई? क्या उसे अक्षय के पास पहुँचने का कोई मौका मिल गया होगा? और क्या मीशिका और तुषार की ये शादी हो पाएगी? क्या लगता है आपको, बताइए कमेंट सेक्शन में। यस।